मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 14 जून 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले कि मैं दूसरे इश्यूज पर बात करूं, आज का जो हमारा मुख्य विषय है उसकी जानकारी मैं आपको पहले देना चाहूंगा और वह है विश्व आतंकवाद की ताकत। याद रखिए, इसका टाइटल विश्व आतंकवाद की समस्या नहीं है, विश्व आतंकवाद की ताकत है, यानी कि वो कौन सी फोर्सेज है, क्या स्थितियां हैं जो विश्व आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और इससे पहले कि इसकी शुरुआत करें, मैं जो न्यूज हमारी रही है रेडियो की और आकाशवाणी के जो समाचार रहे हैं और साथ ही साथ अखबारों की भी जो कुछ कतरनें रही हैं, अखबारों के जो समाचार रहे हैं, उनके बारे में पहले थोड़ी थोड़ी एक सूचनात्मक, उसके साथ साथ कहीं न कहीं समीक्षात्मक चर्चा भी करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा जम्मू एंड कश्मीर की समस्या पर। आपने रेडियो न्यूज की पहले ही जम्मू कश्मीर की समस्या के बारे में देखा होगा, किस तरह से वहां लगातार हमले हो रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार इसकी वजह से खट्टे भी होते चले जा रहे हैं। कभी क्रिकेट जैसा माहौल होता है तो आप देखते हैं कि क्या स्थितियां बन जाती हैं। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले लगभग आप देख रहे होंगे कि एक डेढ़ साल से जम्मू कश्मीर, एक साल से तो है ही, जम्मू कश्मीर की जो स्थिति खराब होती जा रही है उसको देखते हुए यह सिविल सर्विस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, या यूं कह लीजिए कि बन ही गया है। तो आपको जम्मू कश्मीर के इश्यू पर बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छी तैयारी, सुपरफिशियल तैयारी नहीं। सुपरफिशियल तैयारी तो अभी भी आपकी होगी ही, क्योंकि लगातार इस पर इतना लिखा जा रहा है अखबारों में, मैगजीन्स में, तो न्यूज में भी आ रही है बातें, तो उतने तो आप सुनते ही हैं, पढ़ते हैं। एक सामान्य तैयारी तो होगी ही, लेकिन स्पेसिफिक तैयारी आपको करनी चाहिए। अब आप जम्मू कश्मीर के इश्यू पर तैयारी कैसे करेंगे, मैं थोड़ा इस पर आपको अपनी तरफ से कुछ बातें बताना चाहूंगा। फ्रेंड, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कैसे हुआ है। बहुत विस्तार में मत जाइए, लेकिन उसके जो फैक्ट्स हैं, एग्जैक्ट फैक्ट्स, वो आपको मालूम होना चाहिए कि विलय कैसे हुआ। विलय होने के बाद फिर भारतीय जब संविधान बनाया गया तो उसमें अनुच्छेद 370 की व्यवस्था करके जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया। आप देखेंगे जब आप संविधान को पलटेंगे तो 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। फिर आगे चलकर के हम देखते हैं 371 वगैरह में तो जो हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र थे उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है, तो वो भी एक विशेष व्यवस्था के तहत ही जम्मू कश्मीर को दर्जा दिया गया। उस समय का जो राजनीतिक माहौल था उसके कारण ऐसा किया गया। तो आपको अनुच्छेद 370 की भी बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट उसके प्रोविजंस हैं, क्योंकि अनुच्छेद 370 भी आप देखते हैं कि लगातार एक डिस्कशन का मुद्दा बना रहता है, उसको खत्म कर देना चाहिए और बनाए रखना चाहिए, और जब खत्म करने की बात होती तो जम्मू कश्मीर राज्य से जो हमारे राजनीतिक हैं वो उसका बहुत जबरदस्त विरोध करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये है क्या, क्यों इसका विरोध होता है, राइट, वो तैयारी होनी चाहिए। इसके बाद मित्रों, आपको जम्मू कश्मीर में अभी जो समस्याएं चल रही हैं उसके क्या रीजन है, पाकिस्तान क्यों उस पर हस्तक्षेप करता रहता है, क्यों वहां आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है, वहां किस तरीके से जो दूसरे संगठन है वो क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और क्या क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, क्लियर कट जानकारी होनी चाहिए। इसमें कहीं किसी तरह का न तो आपके दिमाग में भ्रम होना चाहिए और न ही कोई कोताही होनी चाहिए कि यार इसको छोड़ो। जो मेन इश्यूज हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। आपके प्री में भी काम आ सकता है और मेंस में भी काम आ सकता है। इसके बारे में मैं आपको एक रिसोर्स बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो मुझे बहुत ही प्यारा रिसोर्स लगता है, और वो रिसोर्स है रामचंद्र गुहा, जो अभी के भारत के माने हुए इतिहासकार हैं। रामचंद्र गुहा की किताब आई है कुछ साल पहले, दो भागों में है, एक तो भारत गांधी के बाद और दूसरा है भारत नेहरू के बाद। बट नेचुरल है कि जम्मू कश्मीर की समस्या जो है आपको भारत गांधी के बाद वाले भाग में मिलेगी, मतलब फर्स्ट पार्ट है भारत गांधी के बाद। उसमें दो अध्याय जम्मू कश्मीर पर हैं, एक है अध्याय 4 जिसका शीर्षक है एक रक्त रंजित हसीन वादी। हिंदी में मैं बता रहा हूं, इंग्लिश में तो ओरिजिनल उन्होंने लिखा है, ये हिंदी में भी ये किताब अवेलेबल है, रक्त रंजित हसीन वादी अध्याय 4। और इसके बाद फिर अध्याय 12 है, वो है कश्मीर की रक्षा। मित्रों बहुत अच्छे तरीके से रामचंद्र गुहा ने लिखा है। सबसे बड़ी बात तो यह कि उन्होंने कहानी किस्से तो सीधे नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस तरीके से लिखा जैसे आंखों देखा हाल लिख रहे हों। तो क्या होता है कि आंखों देखा हाल के तरीके से जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, और इतिहास तो देखिए घटनाओं का ही तो संग्रह है, तो घटनाएं तो घटती हैं, तो घटनाओं का तो आंखों देखा हाल सुनाया जा सकता है ना। महाभारत का आंखों देखा हाल सुनाया गया था, तो हमारे दिमाग में चीजें बहुत क्लियर होती चली जाती है, उसके कारण क्या थे, फिर ये घटना क्यों हुई, फिर ये घटना क्यों हुई। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरी किताबें भी आपके पास होंगी और आपने पढ़ा भी होगा, आगे भी आप पढ़ेंगे, लेकिन यदि संभव हो सके तो आप रामचंद्र गुहा जी की भारत गांधी के बाद किताब के अध्याय 4 और 12 जरूर पढ़ें। मेरा विश्वास है कि इससे यह इश्यू बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर की तैयारी पर थे। मित्रों न्यूज में ही जो दूसरी बात थी, रेडियो में भी और दूरदर्शन में भी आपने देखा कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, 17 जुलाई तक पता लग जाएगा कि हमारे देश के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे। उसमें आपने एक शब्द सुना है, आम सहमति। कोशिश हो रही, भारतीय जनता पार्टी ने एक समिति बना दी है और 3 सदस्यों की समिति है जिसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और उनसे कहा गया है कि वो राष्ट्रपति के लिए कौन उम्मीदवार हो, इसके लिए आम सहमति बनाने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, ये आम सहमति क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगा। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं और क्या है, इन सबके बारे में आप किताबों में पढ़ सकते हैं, काफी विस्तार से लिखा भी गया है, वहां जरूरी नहीं है, और अगर कभी कुछ ऐसी जरूरत महसूस हुई तो फिर मैं उसके बारे में आपसे कभी बात करूंगा। यहां मैं आपको तैयारी के तरीके के बारे में बता रहा हूं। अगर आप मेंस का सिलेबस उठाकर देखें तो मेंस के सिलेबस का जो सेकंड पेपर है, जनरल स्टडीज का सेकंड पेपर, उसमें आपको सेकंड पेपर का नाम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सेकंड पेपर में 2 शब्द दिए हुए, स्पेशली मैं इसमें 3 शब्द शामिल कर, पूरे जो सेकंड पेपर का जो टाइटल है उसमें 5 शब्द हैं, उसमें से मैं स्पेशली 3 शब्दों का उल्लेख करना चाहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये 3 शब्द। चलिए हम गवर्नेंस को थोड़ी देर के लिए हटा भी देते हैं, क्योंकि गवर्नेंस तो फिर कार्यपालिका का हिस्सा और एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हो जाती है, लेकिन जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत निकट से जुड़े हुए हैं। निकट से क्या, यूं कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन तो ये है कि इस तरीके से राज व्यवस्था चलेगी, और पॉलिटी क्या है, पॉलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरीके, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर किस तरह से राज व्यवस्था को चला रही है। राज व्यवस्था की बात मैं कर रहा हूं, प्रशासनिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब हमारी राजनीति किस तरीके की है। ठीक है, संविधान में तो कुछ प्रोविजंस कर दिए गए हैं कि धर्म निरपेक्षता होगा और समानता होगा और रूल ऑफ लॉ होगा, लेकिन क्या हम इनको सही तरीके से कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, है ना। ये है पॉलिटी, यानी कि राजनीतिक दल किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिटी। यानी यूं कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो व्यावहारिक रूप है, अप्लाइड फॉर्म है, वो पॉलिटी हुआ। तो राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल दिया गया है, आप पढ़ लीजिए। अब फिर आता है कि लेकिन इस्तेमाल कैसे होता है, पॉलिटी में कैसे इस्तेमाल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है मित्रों। तो उस पर मैं थोड़ी सी आम सहमति के आधार पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। देखिए भारत एक गणराज्य है, गणराज्य का मतलब है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, राष्ट्र का प्रमुख, सरकार का प्रमुख नहीं, याद रखिए राष्ट्र का प्रमुख, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वह निर्वाचित होगा, यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। यह क्यों कहा गया, क्योंकि दुनिया के अभी भी बहुत से ऐसे देश हैं जिसमें जो राष्ट्र प्रमुख है वो निर्वाचित नहीं है, वो राजवंशीय परंपरा से चला आ रहा है। जैसे ब्रिटेन में अभी भी राष्ट्र के प्रमुख जो है वो महारानी है, और महारानी चुनी नहीं जाती है, वंशानुगत वो चल रहा है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहते हैं, संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं, मोनार्क राजतंत्र, यानी कि महारानी है, राष्ट्र प्रमुख है, लेकिन उनको संविधान के अंतर्गत ही सारे काम करने होंगे, मतलब वो निरंकुश नहीं है। ऐसे भी राज्य हैं, यानी कि देश हैं, जहां पूरी तरह से राजतंत्र है, जैसे अरब देशों के बारे में आप पढ़ेंगे कि कतर है या सऊदी अरब है, ये सब देश है कि वहां राजतंत्र है, और शेख जो भी राजा है उसके अगली संतान राजा बनेगी, फिर अगली संतान राजा बनेगी, तो वहां राजतंत्र काम करता है। आप इस मायने में सोच करके देखें फ्रेंड्स कि दुनिया के ब्रिटेन जैसे देश और भी हैं, बेल्जियम मिलेंगे और दूसरे देश आपको मिलेंगे जहां राजतंत्र है, अभी भी राजतंत्र है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, लेकिन भारत ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को खत्म कर दिया और सीधे सीधे गणराज्य को अपनाया। तो देखिए यहां जो आम सहमति की बात है वो इससे जुड़ी हुई कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का प्रतीक है, वो किसी चुनावी दल से नहीं है। देखिए पार्टियां ही मतदान करेंगी, पार्टी राजनीतिक दल ही राष्ट्रपति को चुनेंगे, और हो सकता है कि जो राष्ट्रपति चुना जाए वो उससे पहले किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो। प्रणब मुखर्जी जी को देख लीजिए, प्रणब मुखर्जी जी तो बकायदे कांग्रेस में ही थे और विदेश मंत्रालय जैसे विभाग उन्होंने संभाले हैं राष्ट्रपति बनने से पहले, और भी आपको सारे इस तरह ज्यादातर इसी तरह से मिलेंगे। तो उस समय राजनीतिक दल का वो सदस्य हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह राष्ट्रपति बनता है आप देखिए कि वो राजनीतिक दलों से ऊपर हो जाता है, यानी कि उससे ऊपर उठ जाता है। इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है कि सारे राजनीतिक दल आपस में मिलकर एक राष्ट्रपति चुन ले। देखिए चुनाव होने पर तो कहीं ना कहीं तो ये है कि नहीं ये बनना चाहिए ये बनना चाहिए, तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने भविष्य को देखते हुए राजनीतिक लाभ उठाने की इच्छा से आप यूं कह लीजिए अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। लेकिन अगर आम सहमति बन जाती है तो वो तो इतनी बड़ी बात होती है कि सही मायने में वो गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है कि सभी राजनीतिक दल इनको अपना राष्ट्रपति मानकर चल रहे हैं, यानी कि वो ऑटोमेटिक ही अब अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठ कर है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में क्यों ना हो। तो मित्रों ये है आम सहमति का अर्थ जो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी जो बारीकियां हैं ये बारीकियों को समझना मुझे लगता है कि सेकेंड पेपर के आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं विश्व आतंकवाद की ताकत के ऊपर। विश्व में आतंकवाद का क्या माहौल है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिविल सर्विस की दृष्टि से। पिछले लगभग 15-20 साल से लगातार आतंकवाद फैलता चला जा रहा है और अपनी किस सीमा पर है आप देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही लंदन के ब्रिज पर हमला हुआ है, इससे पहले कितने हमले हो चुके हैं, मतलब अब ऐसा नहीं है कि ये कुछ पर्टिकुलर देश तक ही सीमित रह गया है, पूरी की पूरी दुनिया में है। किस्मत अच्छी है कि कम से कम लैटिन अमेरिकी देश बचे हुए हैं। ईरान में ही आप देखिए कि वहां के जो आयतुल्ला खुमैनी है उनकी मकबरे पर हमला हुआ जिसमें 12-13 लोग मारे गए। तो लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं होती चली जा रही हैं। दोस्तों कभी कभी आप सोच करके देखिए कि क्या सच में दुनिया के इतने देश हैं, इतने शक्तिशाली राष्ट्र हैं, उनके पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, अगर एक दूसरे से समझौता कर लिया मिल जाए तो क्या ये आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता? खत्म हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन्हें कोई अलग से भी ताकत मिल रही है, अलग से ताकत मिल रही है, और वो ताकत केवल फाइनेंशियल नहीं है कि इनको पैसा मिल रहा है, ये ताकत केवल हथियार का ही नहीं है कि उन्हें हथियार मिल रहे हैं, बल्कि ये ताकत सच पूछिए तो कहीं ना कहीं मोरल सपोर्ट का भी है कि उन्हें समर्थन मिल रहा है, और समर्थन देने वाले कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति तो होंगे ही, राज्य है यानी कि सरकारें हैं। और यही सबसे बड़ा संकट का कारण है कि विश्व आतंकवाद खत्म होना मुश्किल हो रहा है और जो आतंकवादी संगठन है वो इसका फायदा उठाते हैं। जैसे आप सीरिया के मामले को ले लीजिए, सीरिया के मामले में आप देखिए कि ठीक है सीरिया का जो भी संकट है, लेकिन अगर वो सीरिया आतंकवाद से पीड़ित है तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए रूस का अपना स्टैंड है, अमेरिका का अपना स्टैंड है, दोनों का स्टैंड बिल्कुल अलग अलग है, और अलग अलग है तो फिर बात खत्म हो गई। इसका तो फायदा उठाएंगे, जिसको कहते हैं कि दो बिल्लियों की लड़ाई में और बंदर रोटियां, दो बंदरों की लड़ाई में शायद कहा जाता है कि बिल्ली रोटी खा गई। जैसे अभी लेटेस्ट देखिए कतर का मामला देखिए, कतर के मामले की चर्चा में इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स कि अभी जब इंटरनेशनल अफेयर्स पर हो सकता है कि आप आर्टिकल पढ़ें तो कतर शब्द उसमें आए। कतर को आप देख रहे हैं कि नाकेबंदी चारों तरफ कर दी गई है और कतर में बहुत ज्यादा संकट पैदा हो गया है, क्योंकि भारत का भी थोड़ा सा संबंध है तो हम कतर को थोड़ा सा ज्यादा लेकर के चलेंगे। ये खाड़ी के ही देशों में से एक है कतर देश। अब कतर देश ने क्या कहा कि उसने सीधे सीधे कह दिया कि ये जो हमास जो आतंकवादी संगठन है, हमास हिजबुल्ला और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे जो इस्लाम के संगठन हैं कि ये इस्लाम के प्रहरी हैं, इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं और ये मुस्लिमों के अधिकारों के लिए और उनकी पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कतर ने स्टेटमेंट दे दिया, और जब कतर ने स्टेटमेंट दे दिया जो आतंकवादी संगठनों को सहारा मिल गया। और जब कतर ने स्टेटमेंट दिया तो जो दूसरे देश थे उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, जिसमें सऊदी अरब हैं, जिसमें मिस्र हैं और भी अरब के दूसरे देश हैं, उन्होंने कतर के खिलाफ नाकेबंदी शुरू कर दी। किसने गलत स्टेटमेंट दिया, इससे विश्व आतंकवाद बढ़ेगा और उससे सारे अपने संबंध तोड़ दिए। अब आप देखिए कि क्या होगा, अब संघ तोड़ लिए कतर से संबंध। मैं थोड़ा सा भारत के संदर्भ में आपको बता दूं कि कतर में भारत के लगभग 5 लाख लोग काम करते हैं, वहां हालत अब खराब होती चली जा रही है, सामान की कमी होने लगी है। बट नेचुरली कि जब उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा, कामकाज पर प्रभाव पड़ेगा, तो हमारे 5 लाख लोग बेकार हो जाएंगे। अब इनको कैसे भारत लाया जाए और क्या किया जाए, ये भारत के लिए संकट खड़ा करेगा। 2 पॉइंट कतर से हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमारे कामगार, और अभी तक ये काफी विदेशी मुद्रा भारत भेजते थे तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत बेहतर होता था, अब हमारे पास वो प्रॉब्लम आएगी। दूसरा दोस्तों ये है कि कतर से हम तेल और नेचुरल गैस मंगाते हैं, तेल और गैस का आयात करते हैं, तो जब इस तरह की नाकेबंदी हो गई है तो आगे चल करके हो सकता है कि हमें गैस और तेल की कमी पड़े, या हो सकता है कि विश्व में ही इनकी आपूर्ति कम हो जाए और गैस और तेल के रेट बढ़ जाएं। और आपको मालूम है कि भारत 75% लगभग आयात ही करता है पेट्रोलियम पदार्थों का, अगर रेट बढ़ गए तो हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए कि भारत कैसे इससे प्रभावित होगा। अब तीसरा जो तथ्य है मित्रों वो ईरान का है। देखिए ईरान में अभी हमला हुआ और ईरान अब कतर के साथ खड़ा है। अब आप देखिए कि ईरान कतर के साथ खड़ा है, वो कतर को समर्थन दे रहा है, और कतर के खिलाफ जो दूसरे अरब के देश हैं वो नाकेबंदी कर रहे हैं। इससे होता क्या है, इससे यही होता है कि ये जो इस्लामिक संगठन है इनको ताकत मिलती है, जो इस्लामिक संगठन नहीं कह रहे, जो आतंकवादी संगठन है इनको ताकत मिलती है, और फिर ये और जोश और खरोश के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। यानी कि अभी भी आतंकवाद के चरित्र के मामले में पूरी दुनिया एक नहीं हो पाई है, इनका मुकाबला करने के लिए भी एकजुट होकर के उनके विरोध में नहीं खड़ी हो पाई है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि वह विश्व के इन देशों के आपसी वैचारिक, आप कह लीजिए कि जो वैचारिक जो टकराव है उसका फायदा उठा रही है। ये विश्व आतंकवाद की ताकत के संदर्भ में मैंने एक पॉइंट आपके सामने रखा है कि जिसके कारण जो आतंकवादी संगठन है वो उनको हम कमजोर नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों एक तथ्य की ओर मैं आज आपका और ध्यान दिलाना चाहूंगा, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। हालांकि आज का फैक्ट भी मुझे आपसे चर्चा करनी थी, लेकिन आज के फैक्ट के लिए जो मैंने बात चुनी थी वो थोड़ी सी बहुत ही थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी थी, तो अब वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। तो आज का फैक्ट तो मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो करंट कंटेंट डाला गया है, प्रसन्नता के सही मायने क्या है, ये आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके ऐसे राइटिंग में बहुत काम आएगा। और दूसरा जो आपका फोर्थ पेपर है जनरल स्टडीज का, एथिक्स और मॉरलिटी का पेपर है, उसमें बहुत आपकी मदद करेगा और आपको एक नया आउटलुक देगा, एक नई दृष्टि देगा। आपको ध्यान होगा 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था सुख क्या है, आपकी दृष्टि में सुख क्या है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपकी दृष्टि में प्रसन्नता क्या है, हैप्पीनेस क्या है। उस हैप्पीनेस को समझने के लिए ये आर्टिकल बहुत बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है, मैं रिकमेंड करूंगा, ये आर्टिकल करंट कंटेंट में डला हुआ है, उसे आप जरूर देखें। तो फ्रेंड्स आज मैं आज का फैक्ट नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा, हम लोग चलिए कल बात करेंगे, फैक्ट्स मैं देता रहूंगा, उसकी कमी नहीं है। मित्रों एक बात और है कि मुझे जो ईमेल मिले हैं उसमें एक खुशी की बात हम लोगों के लिए यह पता लगी कि अभी गुजरात में जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब एक स्टूडेंट जो हमारे क्लास के स्टूडेंट भी रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि 100% क्वेश्चंस वही पूछे गए जो हम लोग बातचीत कर जो डेली ऑडियो लेक्चर से होते हैं। दूसरे स्टूडेंट ने 80% क्वेश्चन कहा है कि डेली ऑडियो लेक्चर से उनको मिल गए हैं और के पेपर्स बहुत अच्छे गए हैं। कई स्टूडेंट्स के इस तरह के मेल आए हैं, मैं उन सबको एकेडमी की ओर से बहुत ही धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और उनकी सफलता की कामना भी करता हूं। मित्रों अब अंत में मैं अपने उन 4 विद्यार्थियों का स्वागत करना चाहूंगा जिन्होंने एकेडमी के अक्टूबर नवंबर की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं रोहित चौधरी जो नैनीताल उत्तराखंड से हैं, नम्रता यादव रजुआ उत्तर प्रदेश से हैं, प्रणवेंद्र कुमार आप भी रजुआ उत्तर प्रदेश से हैं, और सत्य प्रकाश भार्गव बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।